ओम श्री परमात्मने नमः।
चौथा अध्याय। अभी आपने जिस कर्म योग में काम अर्थात कामना के नाश के लिए प्रेरणा की है, उस कर्म योग की क्या परंपरा है? भगवान बोले, इस अविनाशी योग को मैंने सबसे पहले सूर्य को कहा। सूर्य ने अपने पुत्र मनु से और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। ऐसी परंपरा से चलते आए योग के जानने वाले न होने से अब यह लुप्त प्राय हो गया है। आप तो जानते ही हैं, फिर मेरे से क्यों नहीं कहते? अरे भैया, तू तो मेरा भक्त और सखा है, इसीलिए मैंने यह पुरातन योग तेरे से कहा है, क्योंकि ये बड़े उत्तम रहस्य की बात है। अर्जुन बोले, परंतु भगवान, जिस सूर्य को आपने उपदेश दिया वह तो बहुत पहले उत्पन्न हुआ है और आपका जन्म अर्थात अवतार अभी हुआ है, तो मैं यह कैसे जानूं कि आपने ही पहले अर्थात महासर्ग के आदि में सूर्य को उपदेश दिया था? भगवान बोले, भैया यह बात मेरे इसी जन्म अर्थात अवतार की नहीं है, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको मैं जानता हूँ, अर्थात किस किस जन्म अवतार में मैंने क्या क्या किया, उन बातों को मैं जानता हूँ, पर तू अपने जन्मों को और कर्मों को भी नहीं जानता। जैसा मेरा जन्म हुआ ऐसे ही आपका जन्म नहीं हुआ है क्या? नहीं, मैं आज अविनाशी और मात्र प्राणियों का ईश्वर रहता हुआ ही अपनी प्रकृति को वश में करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। आपके प्रकट होने का अवसर कौन सा है? जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूँ। तो आपका अवतार लेने का प्रयोजन क्या है? साधुओं अर्थात भक्तों की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की संस्थापना करने के लिए मैं युग युग में अवतार लेता हूँ। इस तरह बार बार जन्म अर्थात अवतार लेने से क्या आप बनते नहीं? नहीं, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। अपना कुछ भी स्वार्थ न रखकर बिना प्रयोजन केवल संसार का हित करने के लिए ही मैं प्रकट होता हूँ। इसको जो तत्व से जानते हैं वे मुझे प्राप्त होते हैं। आपको प्राप्त होते हैं, इसमें कोई प्रमाण भी है? मेरे परायण हुए बहुत से मनुष्य मेरे दिव्य जन्म और कर्म को तत्व से जानने रूप ज्ञान से पवित्र होकर और राग आदि से रहित होकर मुझे प्राप्त हो गए हैं। वे आपको प्राप्त क्यों हो जाते हैं? वे संसार को छोड़कर जिस भाव से मेरे शरण हो जाते हैं, मैं भी उनके साथ उसी भाव से वैसा ही बर्ताव करता हूँ। मेरे इस बर्ताव का संसार मात्र के मनुष्यों पर बड़ा असर पड़ता है, जिससे वे भी स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके दुनिया का हित करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। आप अपने शरण होने वालों के इतने अनुकूल हो जाते हैं, फिर भी मनुष्य आपको छोड़कर देवताओं की उपासना क्यों करते हैं? उनके भीतर संसार का महत्व होने से वे कर्मजन्य सिद्धि को चाहते हैं, इसलिए वे मेरे को छोड़कर देवताओं की उपासना करते हैं, क्योंकि कर्मजन्य सिद्धि जल्दी होती है। जैसे मनुष्य कर्मजन्य सिद्धि के उद्देश्य से शुभ कर्म करते हैं अर्थात देवताओं की उपासना करते हैं, ऐसे आप भी किसी फल के उद्देश्य से सृष्टि की रचना करते होंगे। मैं जीवों के गुणों और कर्मों के अनुसार सृष्टि की रचना तो करता हूँ, पर मैं कर्तृत्व और फलेच्छा रहित होकर ही करता हूँ, इसलिए वे कर्म मेरे को बांधते नहीं। इतना ही नहीं, इस तत्व को अर्थात विद्या को जानने वाले भी कर्मों से कभी नहीं बंधते। इस विद्या को जानकर पहले भी किसी ने कर्म किए हैं क्या? हाँ, पहले जो मुमुक्षु हुए हैं उन्होंने इस विद्या को जानकर कर्म किए हैं, इसलिए तुम भी वैसे ही कर्म करो। जिस कर्म को मुमुक्षुओं ने किया और जिस कर्म को करने के लिए आप आज्ञा दे रहे हैं, वह कर्म क्या है? कर्म के विषय में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। अब मैं वही कर्म तत्व बताता हूँ जिससे तू मुक्त हो जाएगा। वह कर्म तीन प्रकार का है, कर्म, विकर्म और अकर्म। उनके तत्व को जरूर जानना चाहिए, क्योंकि कर्मों का तत्व बड़ा ही गहन है। कर्मों का गहन अर्थात गहरा तत्व क्या है जिससे कर्म बंधनकारक नहीं होते? कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना और निर्लिप्त रहते हुए कर्म करना, इस तरीके से संपूर्ण कर्म करने वाला ही योगी है, बुद्धिमान है। वह बुद्धिमत्ता क्या है? जिसके मात्र कर्म संकल्प और कामना से रहित होते हैं और जिसके संपूर्ण कर्म ज्ञानाग्नि से जल जाते हैं, वही पंडितों में पंडित है, अर्थात वही उसकी बुद्धिमानी है। ऐसे पुरुष की स्थिति क्या होती है? वह कर्म तथा कर्म फल की आसक्ति और आश्रय से रहित होता है, सदा तृप्त रहता है, इसलिए वह सब कुछ करता हुआ भी कुछ नहीं करता। अगर कोई साधक निवृत्ति परायण हो तो सब प्रकार के संग्रह का त्याग करने वाला, संसार की आशा से रहित साधक भी केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी बंधता नहीं। अगर कोई साधक प्रवृत्ति परायण हो तो वह भी जैसे परिस्थिति आती है उसमें संतुष्ट रहता है, ईर्ष्या और द्वंद्वों से रहित होता है तथा सिद्धि और असिद्धि में स्वयं रहता हुआ कर्म करके भी नहीं बंधता। इतना ही नहीं, जो आसक्ति रहित और स्वाधीन है तथा जिसका निश्चय केवल परमात्मा को ही प्राप्त करने का ही है, ऐसे केवल यज्ञार्थ कर्म करने वाले साधकों के सभी कर्म लीन हो जाते हैं अर्थात अकर्म हो जाते हैं। वह यज्ञ कितने प्रकार का होता है भगवान? जिसमें संपूर्ण कर्म, उपकरण, सामग्री, क्रिया आदि ब्रह्म स्वरूप हो जाती है, वह ब्रह्म यज्ञ है। जिसमें सब कुछ सामग्री क्रिया आदि मेरे अर्पण हो जाती है, वह भगवत अर्पण रूप यज्ञ है तथा जिसमें साधक अपने आप को ब्रह्म में एक कर देता है, वह अभिन्नता रूप यज्ञ है। साधक अपने इंद्रियों को अपने अपने विषय से हटा लेता है, संयम कर लेता है, वह संयम रूप यज्ञ है तथा साधक राग द्वेष रहित इंद्रियों से विषयों का सेवन करता है, वह विषय हवन रूप यज्ञ है। प्राणों और इंद्रियों और मन की क्रियाओं को रोक कर बुद्धि की जागृति रहते हुए निर्विकल्प हो जाना, ये समाधि रूप यज्ञ है। लोकोपकार के लिए अपना धन खर्च करना जब यज्ञ है। अपने धर्म का पालन करने में जो कठिनता आती है उसको प्रसन्नता पूर्वक सहना तपो यज्ञ है। सिद्धि असिद्धि में सम रहना योग यज्ञ है और सत्शास्त्रों का पठन पाठन तथा नाम जप आदि करना स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ है। पूरक और रेचक और कुंभक रूप प्राणायाम करना प्राणायाम रूप यज्ञ है। प्राणों के जो जो स्थान है उन स्थानों में ही प्राणों को रोक देना, ये स्तंभ वृत्ति प्राणायाम रूप यज्ञ है। इन संपूर्ण यज्ञों को जानने वालों के पापों का नाश हो जाता है। पापों का नाश होने पर क्या होता है भगवान? उपर्युक्त यज्ञ करने वालों को अमृत स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति होती है, परंतु जो यज्ञ करता ही नहीं उसके लिए यह लोक भी लाभदायक नहीं होता, फिर परलोक लाभदायक हो ही कैसे सकता है? ऐसे यज्ञों का वर्णन और कहाँ हुआ है? इस प्रकार यज्ञों का वर्णन वेदों में हुआ है। इन सब यज्ञों को तुम कर्मजन्य जानो, इस प्रकार जानकर यज्ञ करने से तुम अशुभ संसार से मुक्त हो जाओगे। श्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है भगवान? कर्मजन्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान अर्थात ज्ञान यज्ञ में संपूर्ण कर्म समाप्त हो जाते हैं। वह ज्ञान कैसे प्राप्त करें? उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए ज्ञानियों के पास जाओ, उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करो, उनकी सेवा करो और आदर पूर्वक तत्व की जिज्ञासा के विषय में प्रश्न करो, तब वे ज्ञानी महापुरुष तुम्हें ज्ञान का उपदेश देंगे। उनके दिए हुए ज्ञान से क्या होगा? उस ज्ञान के प्राप्त होने पर तुम्हें कभी मोह नहीं होगा तथा तुम संपूर्ण प्राणियों को पहले अपने में और फिर मेरे में देखोगे, अर्थात सर्वत्र एक परमात्म तत्व का ही अनुभव करोगे। इस ज्ञान की और भी कोई महिमा है? हाँ, अगर तुम सब पापियों से भी अत्यंत पापी हो तो भी तुम ज्ञान रूपी नौका के द्वारा संपूर्ण पापों से भलीभांति तर जाओगे। जैसे नौका से समुद्र तरने पर समुद्र रहता है, ऐसे ही पापों से तरने पर पाप तो रह ही सकते नहीं। जैसे देदीप्यमान अग्नि लकड़ियों को सर्वथा भस्म कर देती है, ऐसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। अतः इस मनुष्य लोक में ज्ञान के समान पवित्र कोई नहीं है। वही ज्ञान कर्मियों के द्वारा सिद्ध हुए पुरुष को अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। जो ज्ञान कर्मयोग से सिद्ध हुए पुरुष को अपने आप प्राप्त हो जाता है, वह ज्ञान किस साधक को प्राप्त होता है? इंद्रियों को वश में करने वाले साधन परायण श्रद्धावान साधक को वह ज्ञान प्राप्त हो जाता है, और ज्ञान को प्राप्त होकर बहुत ही जल्दी परम शांति को प्राप्त हो जाता है। इस ज्ञान की प्राप्ति में बाधा क्या है? खुद तो जानता नहीं और दूसरों पर श्रद्धा करता नहीं तथा भीतर में संशय पड़ा है, ऐसे पुरुष का पतन हो जाता है। ऐसे संशय वाले पुरुष को न यह लोक सुखदायी होता है और न परलोक ही। तो फिर वह संशय किसका दूर होता है? जिसने कर्मयोग के द्वारा कर्मों का नाश कर दिया है और विवेक विचार से संशय को नष्ट कर दिया है, ऐसे पुरुष को ज्ञान हो जाता है, फिर उसको कर्म नहीं बांधते। मुझे निस्संदेह होकर क्या करना चाहिए? हृदय में स्थित अज्ञान से उत्पन्न होने वाले संशय का ज्ञान रूपी तलवार से छेदन करके तुम कर्तव्य पालन के लिए खड़े हो जाओ।
गीता माधुर्य, लेखक और बोलने वाले परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज।